असल में जो आज तुम दिख रहे हो ना, तुम्हें ऐसे तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। अरमान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। काम है, उसने धीमे से कहा। सीरियस तो होना पड़ेगा। माहिरा ने उसकी तरफ गौर से देखा, जैसे उसके अंदर छुपी बात पढ़ने की कोशिश कर रही हो। तभी अरमान ने नजरें सीधी करते हुए कहा, फिक्र मत करो, उसकी सारी कन्फ्यूजन मैं खुद क्लियर कर दूंगा। उसके लहजे में अजीब सा कॉन्फिडेंस था, या शायद कोई फैसला। माहिरा कुछ पल उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आया कि ये वही पुराना अरमान है या कोई बिल्कुल नया। माहिरा जो अभी कुछ देर पहले अरमान के पास गई थी, अब वापस टेबल पर आकर बैठ गई। रिदा चुपचाप खाना खा रही थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार अनजाने में अरमान की तरफ उठ जातीं, फिर तुरंत छुप जातीं। दूसरी तरफ नूर का दिल जैसे बेचैनियों से घिरा हुआ था। उसने अरमान को टीवी पर देखा था, वही अरमान जो अब अपनी मंजिल पा चुका था। उसका रेस्टोरेंट चल पड़ा था, उसकी जिंदगी पटरी पर आ चुकी थी और वो आगे बढ़ चुका था। लेकिन नूर, वो वहीं की वहीं रह गई थी। उसे ये भी नहीं पता था कि अरमान की सगाई हो चुकी है और शादी की तैयारियां चल रही हैं। बस एक अजीब सी कसक उसके दिल में घर कर गई थी। रानी, उसकी सबसे करीबी दोस्त, उसके पास बैठी थी, जैसे उसका एकमात्र सहारा। नूर की आवाज़ भर्रा गई, देखना रानी, सिर्फ मैं ही हूं जो अपनी मंजिल से भटक गई। वो तो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, और मेरे रास्ते पता नहीं कब इतने टेढ़े मेढ़े हो गए। उसकी आंखों में दर्द साफ छलक रहा था। कुछ पल चुप रहने के बाद नूर के अंदर का दर्द गुस्से में बदल गया, और उसे तो याद भी नहीं होगा कि कभी वो नूर नाम की किसी लड़की से मिला था। अगर मैं आज इस हालत में हूं, इस बदनामी और जिल्लत में, का जिम्मेदार सिर्फ रेहान नहीं, अरमान भी उतना ही जिम्मेदार है। रानी ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ में सुकून था। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम तबाह हो गई हो? रानी ने नरमी से कहा। मेरी सहेली, जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, तू अभी भी कुछ बन सकती है, बहुत कुछ। नूर ने उसकी तरफ देखा। क्या बन जाऊंगी मैं? नूर की आवाज में टूटन साफ थी। जो मैंने झेला है, जो बदनामी मुझे मिली है, वो जैसे मेरे माथे पर लिख दी गई है, वो कैसे मिटेगी? उसकी आंखें भर आईं। तभी दरवाजा हल्का सा खुला। उसके अब्बा इकबाल उसकी बात सुन चुके थे। वो धीरे से कमरे में आए। कोई भी तुमसे तुम्हारी इज्जत नहीं छीन सकता नूर, उन्होंने ठहर कर कहा। इज्जत बाहर वाले नहीं देते, ये अंदर से होती है। नूर ने सिर उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द अभी भी था। नहीं अब्बा, मैं उस शहर में कुछ बनने गई थी, इज्जत कमाने गई थी। उसकी आवाज कांप गई। और देखिए मैं कैसे वापस लौटी हूं। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने जो ख्वाब देखे थे, मुझे उन्हें पूरा करना था। इकबाल ने गहरी सांस ली, फिर नरमी से बोले, हालात को समझो बेटा, हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। गलती चाहे किसी की भी हो, कामयाब वही लोग होते हैं, हम जैसे नहीं। उनकी बात में बेबसी भी थी और डर भी। सब्र करो बेटा, उसके अब्बा ने धीरे से कहा। नूर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छुपा हुआ था। आप सही कह रहे हैं अब्बा, उसने धीमी आवाज में कहा। कुछ लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी शान से जीते हैं, उन्हें किसी चीज का जवाब नहीं देना पड़ता, और हम जैसे लोग, वो थोड़ी देर के लिए रुकी, हम हर बात का हिसाब देते रह जाते हैं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। फिर इकबाल ने जैसे खुद को संभाला, चलो ठीक है, तुम वहीं पढ़ने चले जाना। उसके अब्बा को लगा शायद वो यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ाई करना चाहती है। उन्होंने थोड़ा सख्त लेकिन समझाने वाले लहजे में कहा, डिग्री लेने के बाद क्या तुम्हें ऐसी नौकरी मिलेगी जिससे तुम ईमानदारी की कमाई से उन लोगों का मुकाबला कर सको? क्या तुम उनके सामने अपना मुकाम बना पाओगी? क्या तुम्हारी इज्जत उनके बराबर खड़ी हो पाएगी? उनकी आवाज में सवाल भी था और चिंता भी। नूर ने सिर झुका लिया, जैसे वो उनकी हर बात सुन रही हो, मान रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसकी खामोशी इस बार हार की नहीं थी, एक ठान लेने की थी। नूर ने धीरे से उनकी तरफ देखा, जैसे अब उसने कोई फैसला ले लिया हो। आप चाहते हैं ना कि मैं सरकारी नौकरी करूं? इकबाल ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उम्मीद की एक हल्की सी चमक उनकी आंखों में आई। तो मैं करूंगी, नूर ने कहा। लेकिन उसके चेहरे पर कुछ और ही चल रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी ठान दिखाई दे रही थी, जैसे वो सिर्फ नौकरी नहीं कुछ साबित करना चाहती हो। इकबाल ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, समझदार बनो, उन लोगों को भूल जाओ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। नूर चुप रही, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी कमजोर नहीं थी, खतरनाक थी। उधर फैजान अपनी अकेडमी में क्लास ले रहा था। अनजान की एक नई कहानी, एक नई लड़ाई अब शुरू होने वाली है। नूर बार बार फोन मिला रही थी, घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। उसे ये नहीं पता था कि फैजान क्लास में था, और उसने साफ कहा था, अगर मैं फोन ना उठाऊं तो मैसेज कर देना, मैं खुद कॉल कर लूंगा। लेकिन नूर वो आज रुकने वालों में नहीं थी। आखिरकार उसने मैसेज किया, मुझे आपसे बात करनी है, अभी। फोन जिस नंबर से जा रहा था वो रानी का था। अकेडमी में बैठा फैजान बार बार आती कॉल से थोड़ा परेशान हो गया। उसने फोन नहीं उछाया, लेकिन जब लगातार मैसेज आया तो उसने जवाब दिया। ये किसका नंबर है? तुरंत रिप्लाई आया, मुझे आपसे अभी बात करनी है। फैजान समझ गया, ये नूर ही हो सकती है। वो उसकी जिद से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने क्लास ले रहे टीचर से हल्का सा इशारा किया और बाहर निकल आया। कॉरिडोर में आते ही उसने कॉल बैक किया। हेलो, फैजान ने कहा, लेकिन नूर ने कॉल उठाने के बजाय सीधा वीडियो कॉल लगा दी। फैजान एक पल को चौंका, फिर कॉल रिसीव कर ली। स्क्रीन पर नूर थी, आंखों में अजीब सा जुनून और अंदर छुपा दर्द। बिना किसी भूमिका के उसने सीधे पूछा, ऑफिसर कैसे बनते हैं? फैजान कुछ सेकंड उसे देखता रह गया, जैसे वो उसके सवाल से ज्यादा उसके पीछे की वजह पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ऑफिसर, उसने धीरे से कहा, आप अचानक ये क्यों पूछ रही हैं? नूर की नजरियां बहुत ठहर गईं। क्योंकि मुझे बनना है, नूर ने बिना झिझक कहा। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे इस एक जवाब में बहुत कुछ छुपा हो। आपको सब पता होता है, नूर ने फिर कहा, तो आपको ये भी पता होगा इसका क्राइटेरिया क्या है। फैजान ने हल्की सांस ली। अब उसे समझ आ गया था कि ये कोई अचानक आया ख्याल नहीं है। सबसे पहले, उसने शांत आवाज में कहा, आपको अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी, उसके बाद ही आप ये एग्जाम दे सकती हैं। ठीक है, नूर ने तुरंत जवाब दिया, जैसे उसने बस यही सुनना था। फैजान थोड़ा हैरान हुआ, उसे लगा था वो और सवाल करेगी, लेकिन नूर चुप हो गई। मैं आपके लिए अपना काम छोड़कर आया हूँ, फैजान ने थोड़ा सख्ती से कहा, अगर आपको कुछ और नहीं पूछना तो प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। नूर ने स्क्रीन को गौर से देखा, उसका साफ सुथरा रूप, सेट बाल, पीछे अकेडमी का माहौल। आप पढ़ने गए हुए हैं? उसने पूछा। नूर को एक पल के लिए अजीब लगा, ये वही फैजान था, लेकिन अब कुछ अलग था। ठीक है, थैंक्स, कहकर उसने कॉल काट दी। क्या हुआ? रानी ने तुरंत पूछा। नूर कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीमे से बोली, वही फैजान था। उधर टीवी पर न्यूज चल रही थी और रेहान की नजर अचानक वहीं ठहर गई। आज शहर में एक नए चाइनीज रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग, स्क्रीन पर नाम आया, अरमान। असल में वो एक बड़ी फ्रेंचाइजी थी और अरमान अब ऑफिशियली अपने काम में आगे बढ़ चुका था। ड्राइंग रूम में रेहान और रेहाना बेगम बैठे थे, पास ही जुबेदा बेगम भी मौजूद थी। नौकरानी चाय रखकर चली गई। रेहाना बेगम ने कप उठाते हुए कहा, मुझे तो किसी ने इन्वाइट ही नहीं किया। उनकी आवाज में हल्की शिकायत थी। टीवी पर चल रही न्यूज ने ही रेहान को बताया था कि आज अरमान के चाइनीज रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, एक नई फ्रेंचाइजी। ड्राइंग रूम में रेहान और रेहाना बेगम साथ बैठे थे, सामने जुबेदा बेगम और माहिरा थी। तभी नौकरानी चाय के कप रखकर चली गई।
मुझे तो समझ नहीं आता भाभी, आप लोग ओपनिंग सेरेमनी में पहुंच क्यों नहीं पाए?